अंतरा, क्या हुआ? क्या सोचने लगी तुम? अन्वय ने बेड की दूसरी तरफ बैठते हुए सवाल किया और निगाहें अंतरा पर ठहरी, जो अयान के सर को अपनी हथेली सहला रही थी। नजरें जाने कहाँ टिकी थीं। अयान सो चुका था, पर अंतरा अलग ही दुनिया में गुम थी। अन्वय की आवाज कानों में पड़ी, तब कहीं जाकर अंतरा ख्यालों की दुनिया से निकलकर हकीकत में लौटी। नजरें अन्वय की ओर घूमी और उन निगाहों में उलझन व चिंता के भाव देखकर उसने अपने चेहरे के भावों को कुछ सामान्य किया। कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ ख्याल मन में आ रहे थे। कैसे ख्याल? अन्वय ने फिर सवाल किया और अब की बार अंतरा की दिल की बात उसके लबों पर उभर आई। जीजी और जीजू के जाने से ऐसा लग रहा है जैसे घर एकदम से सोना हो गया है। गहरी उदासी और मायूसी उसके चेहरे पर उभरी थी। अन्वय भी कुछ दुखी नजर आने लगा था। उनकी कमी तो खल रही है, उनके जाने से दुख भी हो रहा है, पर भाई और भाभी का यहाँ से जाना ही ठीक था। कब तक भाभी मम्मी के अत्याचार सहती रहती और कब तक भाई उनके और मम्मी के बीच पिसते रहते? मम्मी पर किसी बात का, किसी धमकी का कोई असर नहीं होता था और इन सब में भाभी को बहुत सफ़र करना पड़ता था। भाई अलग परेशान थे, अब दोनों को इन सब झंझटों से छुटकारा मिल गया। उन्हें एक दूसरे के साथ पूरा वक्त मिलेगा। हालातों के बदलने के साथ उनका रिश्ता भी सुधर जाएगा। फाइनली वो बिना किसी चिंता फिक्र और रोज़ रोज़ के तनाव के सुकून से ज़िंदगी बिता पाएंगे। इस हालत में वैसे भी भाभी को स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, जो यहाँ होना मुमकिन नहीं था। अब भाई के साथ रहेंगे तो भाई उनका पूरा ध्यान भी रखेंगे और भाभी खुश भी रहेंगी, जिससे उनके होने वाले बच्चे पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद पल भर रुकने के बाद उसने आगे कहा, हालांकि भाई के लिए फैसला लेना बहुत मुश्किल रहा होगा। भाभी उन्हें संभाल लेंगे, पर शायद ये सूनापन मुश्किल ही कभी भर पाएगा। खैर, मैंने सुना था कि माँ बाप की करने की सज़ा बच्चों को भुगतनी पड़ती है और अब देख भी लिया, मम्मी के करतूतों और गुनाहों की सज़ा हम सबको भुगतनी होगी। अब तो बस एक उम्मीद है कि आगे चलकर मम्मी को उनकी गलतियों का एहसास हो जाए, वो भाभी से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले और हमारा परिवार फिर एक हो जाए। ये ज़रा मुश्किल है, पर चाहे इतना ही वक्त क्यों ना लग जाए, पर मैं अपनी जीजी को पूरी इज्जत और मान के साथ वापस इस घर में लेकर ज़रूर आऊँगी, अंतरा ने मन ही मन खुद से कहा। उसके इरादे मजबूत थे और उसकी आंखों में एक जुनून सा झलक रहा था, कुछ भी कर गुजरने का जुनून, अपनी जीजी को वो मान सम्मान और इस घर में वो जगह दिलाने का जुनून जिस पर उसका हक था, रूपाली जी के हुरूर को तोड़ने, उनके अहंकार को हराने का जुनून। असली खेल तो अब शुरू हुआ था और अब जाकर रूपाली जी का सामना असली अंतरा से होने वाला था, जो मैदान जंग में उन्हें धूल चटाने के मजबूत दृढ़ इरादों के साथ ही उतरी थी। अक्षय रूम में लगे काउच पर बैठा बुक पढ़ रहा था और आहाना बेड पर लेटी करवटें बदलते हुए सोने की कोशिश कर रही थी। कुछ वक्त गुजर गया था। बेचैनी से करवटें बदलती आहाना अंत में तंग आकर उठकर बैठ गई और मायूस निगाहें अक्षय की ओर घुमाई। अक्षय, जिसका ध्यान भले ही बुक पर था, पर आहाना की हर मूवमेंट पर उसकी नज़र थी, उसने नज़रें उसकी ओर घुमाते हुए भौं उचका दी। क्यों, इस वक्त आप नॉवल का क्या करेंगी? रात हो गई है, आपको सोना चाहिए। नहीं, जगह है, इसीलिए नींद नहीं आ रही। आहाना ने निचले होंठ को बाहर निकालते हुए मासूम सा चेहरा बनाया और मुंह लटकाए बेचारगी से अपनी परेशानियों से बता दी। उसकी बात सुनकर अक्षय ने अपनी बुक बंद करके टेबल पर रखी और उठकर आहाना के पास चला आया। जगह नहीं है, पर पति वो वही है जिसके बाहों में समाकर आप सुकून की नींद सोया करती थी। आइए, मैं सुला दूं आपको। अक्षय ने उसके पास बैठते हुए अपनी बाँह उसकी ओर फैलाई और आंखों से उसे पास आने का इशारा किया। आहाना, जो इतनी देर से अक्षय को बुक में घुसे देखकर मन ही मन कुड़ रही थी, अकेले बोर होने के साथ चिढ़ भी रही थी, खुद अक्षय की वजह से परेशान थी और अब उसे अपने पास पाकर उसके दिमाग में शरारत पनपने लगी थी। उसने आंखों को शरारत से मटकाया और होठों को गोल करते हुए चंचल अंदाज में बोली, हाँ, जगह नहीं है, पर पति तो वही पुराना है। ल बस, आगे कुछ नहीं कहेंगे आप, फिर वो दूसरे पति वाली बात तो बिल्कुल नहीं कहेंगी। आहाना के इरादे भांपते हुए अक्षय ने सकपकाते हुए बीच में ही हड़बड़ी में उसे टोक दिया। उसे यूं चिढ़ते देखकर आहाना को बड़ा मजा आ रहा था। उसने जानकर ही ये बात छेड़ी थी और अब अक्षय का चेहरा देखकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। उसकी खुशी से खनकती मिठास भरी आवाज उस कमरे में बिखर गई। अक्षय, जो कुछ चिढ़ गया था, आहाना को यूं खुलकर हंसते देखकर वो खुद को मुस्कुराने से रोक न सका। आहाना खिलखिलाने में मगन थी और अक्षय की नज़रें आहाना के पंखुड़ियों से कोमल गुलाबी खिले अधरों पर टिकी थीं। उसके शैतान नटखट दिल में ख्वाहिश जागी और आहाना के चेहरे की ओर झुकते हुए उसने उसके लबों को चूम लिया। पल भर को दोनों के अधरों ने स्पर्श किया और अक्षय वापस पीछे हट गया। सब इतने अचानक हुआ कि आहाना आंखें फाड़े और मुँह खोले अचंभित से उसे देखती ही रह गई। उसकी हंसी थम चुकी थी और अब वो सदमे की स्थिति में अपलक उसे ही देखे जा रही थी। क्या हुआ, अब आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? ये एक छोटी सी सजा थी उस खता की जो आपने की मुझे सताकर। खुद पर इतराते हुए अक्षय शरारत से मुस्कुराया। अहाना के कानों में जैसे ही अक्षय के शब्द पड़े, वो जैसे गहरी नींद से जागी और इसके साथ ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। नाराजगी से गालों को फुलाए वो खफा खफा निगाहों से अक्षय को घूरने लगी। अब मुझे घूरना बंद कीजिए और जल्दी से इधर आइए, वरना अभी तो बस एक शॉर्ट ट्रेलर ही दिखाई है। अगर नीयत बिगड़ी, मूड बना तो पूरी मूवी भी दिखा सकता हूँ। इंटेंस निगाहों से अहाना को देखते हुए अक्षय ने शरारती मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए अपनी आई विंक कर दी। अहाना पहले तो उसकी बात सुनकर चौंक गई, फटी आंखों से हैरान परेशान से उसे देखने लगी और अगले ही पल हड़बड़ाते हुए अक्षय के सीने से आ लगी। और अब अक्षय के ठहाके बुलंद हुए थे जिसकी आवाज़ अहाना के दिल को धड़का गई। हल्की फुल्की नोक छोंक और चंचल शरारतों छेड़छाड़ के बीच दोनों अपने प्यार की हसीन दुनिया में खो गए थे। अगले दिन अक्षय की नींद अपने टाइम पर ही खुली। उठते ही उसने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और टाइम देखा तो अभी 5 ही बज रहे थे। फ़ोन वापस साइड में रखते हुए वो उठकर बैठ गया। अब हास तो उसे पहले ही हो गया था कि वो इस वक्त वहाँ अकेला है। बैठते हुए उसने नज़रें घुमाई पर अहाना से रूम में कहीं नज़र नहीं आई। उसकी भौहें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गईं। तभी नज़र बालकनी के दरवाजे पर पड़ी जो हल्का खुला था और अक्षय के लबों पर कातिलाना मुस्कान बिखर गई। अपनी स्लीपर्स पहनते हुए वो धीमे कदमों से उस दिशा में बढ़ गया। आराम से दरवाज़ा खोला तो नज़र सामने खड़ी अहाना पर पड़ी। सर्दी का मौसम था और सुबह का वक्त, कोहरे और धुंध की चादर ने सब कुछ अपनी आगोश में समेटा हुआ था। सिवाय कोहरे के कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। रेलिंग थामे खड़ी अहाना एक हाथ में चाय का कप थामे सामने देख रही थी। अपने बदन पर एक शॉल लपेटी हुई थी। ठंड इतनी थी कि उसके गोरे मुखड़े पर हल्की लालिमा बिखरी थी और नाक टमाटर जैसी लाल हो गई थी। शीतल बयार उसे छूकर गुजर रही थी जिसकी ठंडक से उसका रोम रोम से हर उठता था। अहाना की उंगलियों के बीच उलझे उस कप से गर्म भाप निकल रही थी और साथ ही उठ रही अदरक इलायची की भीनी भीनी सी खुशबू जो उसकी ठंड से जमती सांसों को महका रही थी। अहाना ने एक घूंट ली। इसके साथ ही किसी की बाहें उसकी कमर पर आ लिपटी और किसी ने पीछे से उसे अपनी आगोश में समेट लिया। ठंड से जकड़ता उसका बदन उस शख्स की बदन की गर्मी पाकर उसमें सिमटने लगा और लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई।
गुड मॉर्निंग अनु। अहाना को अपनी बाहों में भरे हुए अक्षय ने उसकी गाल को चूम लिया। इस सर्द मौसम में उसके एहसासों और लम्स की गर्मी अहाना को राहत पहुंचा गई और लबों पर थिरकती मुस्कान और गहरी हो गई। रेलिंग पर टिकी अपनी हथेली से उसने अक्षय के गाल को धीरे से सहला दिया। गुड मॉर्निंग। अगले ही पल अक्षय चहुंक उठा जब अहाना की बर्फ सी ठंडी हथेली ने उसकी गर्म गाल को स्पर्श किया। उफ, कितने ठंडे हो रखे हैं आपके हाथ। कब से ठंड में यहाँ खड़ी अपनी कुल्फी जमा रही हैं। ज्यादा देर नहीं हुई, पर हमारे हाथ पैर सर्दी में ठंडे ही रहते हैं, भूल गए आप? अहाना जवाब देते हुए चाय का कप रेलिंग पर रखते हुए उसकी ओर पलट गई। अहाना ने ऊपर को तनी बौहें और आंखों में सवाल देखकर अक्षय मुस्कुराया, फिर उसकी बर्फ सी ठंडी हथेलियों को अपनी गर्म हथेलियों के बीच थामकर सहलाने लगा। याद है, और इन्हें कैसे गर्माहट का एहसास करवाना है ये भी बखूबी जानता हूँ। अक्षय का जवाब सुनकर अहाना मुस्कुरा उठी। बाद में हमारी हथेली को गर्म करते रहिएगा, अभी हाथ छोड़िए वरना हाथ गर्म करने के चक्कर में हमारी चाय ठंडी हो जाएगी। चाय का जिक्र सुनते ही अक्षय के चेहरे के भाव बदल गए और माथे पर कुछ लकीरें उभर आईं। उसने चिंतित निगाहों से अहाना को देखा।